प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
कितना तेरा प्रिय श्रोता, जीवित और सच्चे परमेश्वर के नाम में आपको शांति मिले। इसी सुंदर गीत के साथ ही हम आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, बड़ी दीनता के साथ हम अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य, समझ और बुद्धि प्रदान करें। पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी समस्या में है, किसी चिंता में डूबा है, निराश है या किसी रोग से पीड़ित है, प्रभु आप उस पर अनुग्रह करें और उसका छुटकारा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत मित्र, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस पुस्तक के 30वें अध्याय को आरंभ करते हैं। 30वें अध्याय का शीर्षक है याकूब के पुत्रों का जन्म। इसके अतिरिक्त राहेल द्वारा यूसुफ का जन्म और याकूब मामा लाबान का घर छोड़ने की तैयारी करता है। तो इन विषयों को आज हम 30वें अध्याय में देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक के 30वें अध्याय में सर्वप्रथम हम याकूब के बच्चों के जन्म के विषय में पढ़ेंगे। सो आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 30वां अध्याय पहला और दूसरा पद। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाहा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। मित्रवर, यहां पर हम देखते हैं कि उन दिनों में जिस महिला के पास कम संतान होती थी, उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जितनी अधिक संतान होती, उतनी ही उस महिला की स्थिति परिवार में अच्छी होती थी। राहेल सुंदर थी, किंतु संतान उत्पन्न करने के योग्य न थी। वह संतान के लिए अपने पति पर दबाव डालती है। वह उसे आत्महत्या कर लेने की बात कहकर डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। साथ ही वह अपनी जेठी बहन से संतान के कारण डहा करने लगती है। राहेल संतान के लिए परमेश्वर से आग्रह करने की अपेक्षा अपने पति से झगड़ा करती है, किंतु याकूब उसके व्यवहार से झुंझलाकर उसे वास्तविकता बता देता है कि संतान परमेश्वर की ओर से है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से वरदान है। याकूब ने राहेल को बताया कि मैं तुझे संतान तब तक नहीं दे सकता जब तक परमेश्वर ही तेरी कोख न खोले। राहेल ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की और याकूब के पारिवारिक इतिहास को दोहराया। याकूब की दाता के परिवार में ऐसा ही हुआ। इसहाक के परिवार में भी एसाव ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए इश्माएल के परिवार में विवाह किया और अब याकूब के परिवार की भी यही समस्या है। वे परमेश्वर पर भरोसा करने में धैर्यशील नहीं है। सो आइए देखें कि राहेल अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाती है या कुछ और करती है। तीसरे पद से लेकर आठवें पद तक हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो उसने उसे अपनी लौंडी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया है, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राहेल की लौंडी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल युद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। मित्रवर, हम यहां पर देखते हैं कि राहेल परमेश्वर के पास नहीं गई, उसने अपनी दासी का प्रयोग किया और उस समय की परंपरा का सहारा लिया। ऐसा ही हम अब्राहम और सारा के मामले में भी देख चुके हैं। जब सारा ने देखा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में विलंब कर रहा है, तो उसने अपनी मिस्री दासी हाजरा को अब्राहम के पास भेजा कि उसके लिए संतान उत्पन्न करे, और इस प्रकार उसने परिवार में समस्या उत्पन्न करने के साथ साथ परमेश्वर के कार्य में भी भारी बाधा उत्पन्न कर डाली। स्मरण रहे, परमेश्वर ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं देता है। पवित्र बाइबल हमें ठीक ठीक अभिलेखा प्रदान करती है, किंतु इसका तात्पर्य ये कदाचित नहीं है कि पवित्र बाइबल किसी अनुचित कार्य का समर्थन कर रही है। बहुपत्नी प्रथा सदैव पारिवारिक समस्याओं तथा कलह का कारण होती है। अग्रिम पदों में लिहा की प्रतिक्रिया को हम देखने जा रहे हैं। लिहा भी राहेल को उसी के ढंग से उत्तर देती है। सो आइए मेरे साथ देखिए, नवें पद को देखिए। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी लौंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की लौंडी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की लौंडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। मित्रवर, इस प्रकार राहेल ने अपनी दासी बिल्हा से दो पुत्र प्राप्त किए, एक का नाम उसने दान तथा दूसरे का नाम नप्ताली रखा। लिया ने भी अपनी दासी जिल्पा से दो पुत्र प्राप्त किए, एक का नाम उसने गाद तथा दूसरे का नाम आशेर रखा। और इस प्रकार ये चार पुत्र इन दोनों पत्नियों की अधीरता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। तब 14 से 21 पदों में हम देखते हैं जहां इस प्रकार से लिखा है, गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फूल मिले और वह उसको अपनी माता लिया के पास ले आया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सो सांझ को जब याकूब मैदान में आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, सो उसने उसका नाम इस्साकार रखा। और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। सो उसने कहा, सो उसका नाम जबुलून रखा। तत्पश्चात उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसने उसका नाम दीना रखा। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। मित्रवर, मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं कि राहेल की अपेक्षा लिया परमेश्वर का भय मानने वाली और उसमें आस्था रखने वाली स्त्री थी, और इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर की कृपा से लिया ने स्वयं याकूब से 2 और पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इसाकार तथा जबुलून हैं। लिया ने एक पुत्री को भी जन्म दिया जिसका नाम उसने दीना रखा। हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि परमेश्वर लिया से अधिक प्रेम करता था, जबकि याकूब राहेल से। लिया से जो संतान उत्पन्न हुई, उनका इसराइल के घराने में महत्वपूर्ण स्थान है। लेवी याजकों का गोत्र है तो यहूदा राजाओं का गोत्र है, जिससे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। सो 22 से 24 पदों में हम इस प्रकार से पाते हैं, यहां लिखा है, और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। सो उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। मित्रवर, परमेश्वर ने राहेल पर भी कृपा की और उसे भी संतान दी, उसने उसका नाम यूसुफ रखा। यही वो व्यक्ति है जो मिस्र को जाएगा। ये पवित्र बाइबल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से है। हम अग्रिम अध्यायों में यूसुफ के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यूसुफ में हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का चित्र देखेंगे और इसके पश्चात राहेल से एक और पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम बिन्यामीन रखा जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम इसराइल के 12 पुत्रों के नाम की सूची भी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं से इसराइल के 12 गोत्र बनेंगे और अंत में इसराइल राष्ट्र की स्थापना होगी। अब हम अग्रिम पदों में देखेंगे कि याकूब अपने मामा लाबान का घर छोड़ने की तैयारी करता है। सो 25वें पद से आगे हमारे साथ देखिए, यहां लिखा है, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के वाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। श्रोता, आइए मामा लाबान की प्रतिक्रिया देखते हैं कि वो याकूब के इस प्रस्ताव का क्या उत्तर देते हैं। तो 27 और 28 पदों में हम पढ़ते हैं कि लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। मित्रवर, लाबान का ये अनुभव रहा कि परमेश्वर ने याकूब के कारण उसे आशीष दी है और इसलिए उसने ये जान लिया कि याकूब के साथ परमेश्वर रहता है। एक परमेश्वर के जन के जीवन की आत्मिक तथा भौतिक दोनों ही आशीषें संसार के समक्ष परमेश्वर की उपस्थिति की साक्षी देते हैं। सर्वदा हाथ फैलाने वाले लोग परमेश्वर का अच्छा विज्ञापन नहीं है। एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन की भौतिक आशीषें और उसके आत्मिक जीवन की आशीषें दोनों ही उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। लाबान याकूब से कहता है, तू जाने में शीघ्रता ना कर, तू अभी और ठहर, क्योंकि तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे भी आशीष दी है, मैं तेरी मजदूरी भी बढ़ा दूंगा। ऐसा ही अनुभव हम इसहाक और अबीमेलेक के साथ भी कर चुके हैं। अबीमेलेक ने भी इसहाक से ऐसा ही कहा कि मैंने जान लिया कि परमेश्वर तेरे साथ है। और हम देखेंगे कि याकूब लाबान मामा को क्या उत्तर देता है। मुझे याकूब का उत्तर पसंद आया, शायद आपको भी अच्छा लगे। 29वें पद को देखिए, उसने उससे कहा, क्या तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे? मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं? और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? श्रोता, याकूब लाबान से कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यहोवा ने मुझे तेरे लिए आशीष का कारण बनाया है। यहोवा ने तुझे मेरे कारण आशीष दी है, परंतु मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? श्रोता, याकूब को लाबान के प्रशंसा भरे शब्द लुभा ना सके। अब याकूब की दृष्टि अपने घर पर है। वह अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पहचान रहा है। वह उसके लिए चिंतित है। यहां हम इसे अनेक लोगों के लिए सुंदर उत्साहजनक संदेश है। क्या आपने संसार की प्रशंसा बटोरने के लिए अपने परिवार के उत्तरदायित्व से मुंह तो नहीं मोड़ रखा है? आप अपने मित्रों में प्रशंसा बटोर रहे हैं, आप समाज में प्रशंसा बटोर रहे हैं, आप बहुत सा धन कमा रहे हैं, किंतु क्या आपने परिवार के विषय में आपने सोचा है? क्या आपने संसार की प्रशंसा बटोरने के लिए अपने परिवार के दायित्व से मुंह तो नहीं मोड़ रखा है? मेरे मित्र, नीति वचन का लेखक सुलेमान नीति वचन की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 27वें पद में कहता है, अपना बाहर का काम काज पहले ठीक कर लेना और खेत का काम संभाल लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। याकूब बाहर का काम कर चुका, अब उसे अपने घर के विषय में सोचना है। मैं अपने घर का काम करने पाऊंगा? याकूब के सामने एक प्रश्न है कि मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। तब 31वें पद से 36वें पद में हम पढ़ते हैं जहां लिखा है, उसने फिर कहा, अर्थात लाबान ने याकूब से फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाली वह चित्ती चितकबरी हो और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी वह चित्ती वाली हो उन्हें मैं अलग रखूंगा और मेरी मजदूरी वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगे। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, सो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। मित्रवर, याकूब ने लाबान से कहा, शुद्ध अर्थात असली जाति की भेड़ बकरियां आपकी और चित्ती वाली मेरी। लाबान बात को स्वीकार करता है और अपनी और याकूब के मध्य 3 दिन के मार्ग की दूरी का अंतर स्थापित कर लेता है। लाबान को याकूब का प्रस्ताव प्रथम दृष्टि में अच्छा लग रहा था। तब 37वें पद से आगे हम पढ़ते हैं, और याकूब ने चनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौती में रखा खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आईं तब गाभिन हो गईं, और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनने लगीं। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उससे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौती में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाबिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाबिन होती थीं, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था, इससे निर्बल निर्बल लाबान की रहीं और बलवंत बलवंत याकूब की हो गईं। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और लौंडियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। श्रोता, याकूब पुनः बड़ी चतुराई से काम लेता है और मामा लाबान को करारी मात दे देता है। याकूब अपने पिता के देश वापस लौटने की तैयारी में है। अग्रिम अध्याय इस घटना पर और भी अधिक प्रकाश डालेगा। कार्यक्रम के अंत में हम याकूब के 12 पुत्रों की सूची पढ़कर सुनाते हैं। यही 12 पुत्र इसराइल राष्ट्र के 12 गोत्रों के मूल पिता होंगे। सो प्रस्तुत है इसराइल के 12 पुत्रों की सूची। सबसे पहले जिनका जन्म लिया से हुआ, उनमें सबसे पहले रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबुलून और अंत में पुत्री दीना। तब दूसरा है जिनका जन्म राहेल की दासी बिल्हा से हुआ, इनमें सबसे पहले दान और नप्ताली। उसके पश्चात जिनका जन्म लिया की दासी जिल्पा से हुआ, उनमें है गाद और आशेर। तब जिनका जन्म राहेल से हुआ, उनमें यूसुफ और बिन्यामीन है। और इस प्रकार याकूब के कुल 12 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। अग्रिम अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर याकूब को हारान से उसके पिता के देश वापस जाने को बुलाता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर को इस बात का पूरा पूरा ध्यान था कि याकूब के बच्चों का पालन पोषण उसके मामा लाबान के घर के वातावरण में न हो, और इसलिए परमेश्वर उनको उस स्थान से हटाने का प्रयास करता है और परमेश्वर ने उस कार्यक्रम को आरंभ कर दिया है। प्रिय मित्र, परमेश्वर को अपने लोगों की आज भी चिंता है। वो वर्तमान में भी अपने लोगों को ऐसे वातावरण में से निकालना चाहता है जो उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनकी साक्षी के लिए हानिकारक हैं। हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है ताकि हम विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।